नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिजोरम, मणिपुर और असम में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वे सबसे पहले मिजोरम के आइजोल में 9000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से रेलवे, सड़क मार्ग, ऊर्जा, खेल सहित कई क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप बैराबी सैरांग नई रेलवे लाइन का शुभारंभ करेंगे। इस पर 8000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। इस रेल लाइन में 45 सुरंगें बनाई गई हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
51 किलोमीटर से अधिक की इस रेल लाइन परियोजना के शुरू होने से मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ेगी। इस परियोजना के साथ ही आइजोल गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर के बाद भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर बन जाएगा। इसके जरिए व्यापार, पर्यटन और आर्थिक विकास के नए रास्ते खुलेंगे। इस परियोजना से रेलवे स्टेशनों के पास रोजगार और व्यावसायिक अवसर उत्पन्न होंगे और लघु उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री 3 नई एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जिनमें सायरंग दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, सायरंग गुवाहाटी एक्सप्रेस और सायरंग कोलकाता एक्सप्रेस शामिल हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, आइजोल।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैराबी सैरांग रेलवे लाइन को मिजोरम के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। ये रेल लाइन पहली बार मिजोरम की राजधानी आइजोल को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर में 8500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वे इम्फाल में 1200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। शाम को श्री मोदी असम के गुवाहाटी में डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत यूरोप को एक विश्वसनीय साझेदार, अहम सहयोगी और कानून के शासन, स्थिरता, गुणवत्ता मानकों और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध मित्र मानता है। नई दिल्ली में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर संयुक्त मंत्री स्तरीय व्यावसायिक संवाद में उन्होंने कहा कि इस साझेदारी को न केवल व्यापार विस्तार के संदर्भ में बल्कि विश्वव्यापी व्यापक सकारात्मक प्रभाव के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। श्री गोयल ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ एक दूसरे के पूरक हैं, न कि प्रतिस्पर्धी। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। कल रात काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। पिछले 3 दिन चली गहन चर्चा के बाद राष्ट्रपति भवन में सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया। भारत ने नेपाल में श्रीमती सुशीला कार्की के नेतृत्व में नई अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इससे नेपाल में शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय ने कहा कि एक निकट पड़ोसी, एक लोकतांत्रिक देश और दीर्घकालिक विकास साझेदार के रूप में भारत दोनों देशों के लोगों की भलाई और समृद्धि के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फलस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान और द्विराज्य समाधान के क्रियान्वयन पर न्यूयॉर्क घोषणा का समर्थन करने वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। प्रस्ताव फ्रांस ने रखा था, जिसे 142 देशों की भारी बहुमत से पारित किया गया। विरोध में 10 देशों ने मतदान किया। समरकंद में कल फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट के 8वें राउंड में भारतीय ग्रैंड मास्टर और विश्व चैंपियन डी गोकेश और दिव्या देशमुख की बाजी ड्रॉ पर समाप्त हुई। ये बाजी 6 घंटे तक चली। 8 राउंड के बाद दिव्या अब 4 अंकों के साथ गोकेश से आधा अंक आगे हैं। लक्ष्य सेन और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपने अपने वर्गों के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज लक्ष्य का सामना चीनी ताइपे के चोउ तिएन चेन से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग की जोड़ी का अगला मुकाबला ताइवान के चेन चेंग क्वान और लिन बिंग वी की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।